गीता के पांचवें अध्याय से तीन श्लोक हैं 21, 22 और 23, इन पर आज विचार होगा। इसमें श्लोक है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मने यत् सुखम्, सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्मिते। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जिनका इंद्रियों के द्वारा स्पर्श किया जाता है या जिनका इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है उसको स्पर्श कहते हैं। इसका मतलब जैसे कि मान लिया कान है, कान आवाज को सेंस करता है, आवाज को अनुभव करता है, वो जो साउंड है, जो आवाज है, वो कान के लिए स्पर्श है। कान ज्ञान इंद्रिय है और आवाज जो है वो कान को स्पर्श करती है या कान उसको स्पर्श करता है, तब हमको उस आवाज का बोध होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श किया जा सके वे स्पर्श है। इसका मतलब शब्द आदि विषयों का नाम स्पर्श है। और ये कहाँ है, ये सब अपने भीतर नहीं है, इसलिए ये बाह्य हैं या बाह्य। तो पांचों जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनता है, जीवा स्वाद चखती है, नासिका खुशबू बदबू सुनती है, और त्वचा जो है वो तो सर्दी गर्मी मुलायम सुख का एहसास करता है। तो पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हमारी, ये बाहर की वस्तुओं का, बाहर के संसार का स्पर्श करती हैं या उनके द्वारा उनका बोध हमको होता है। अब यहां कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम्। आत्मा का मतलब है यहां है पुरुष से, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, पुरुष का मतलब है जीवात्मा, जो पांचों ज्ञान इंद्र के द्वारा वस्तुओं का अनुभव करता है, वो मैं हूं, वो जीवात्मा है, उसी को पुरुष भी कहते हैं। तो कहते हैं जितने भी बाह्य स्पर्श हैं उनमें जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है, अंतःकरण क्या है, मन और बुद्धि या अंतःकरण है, करण कहते हैं इक्विपमेंट को, ये दोनों इक्विपमेंट इस देह के अंदर है, जो निर्णय करती है, जो निश्चय करती है उसका नाम बुद्धि है, और जिसमें मन में चलता है उसका नाम है मन। तो मन और बुद्धि ये दोनों मिलकर अंतःकरण कहलाते हैं। तो कहते हैं कि उस बाह्य स्पर्शों में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है, ऐसा विषय प्रीति से रहित पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जो अपने भीतर है। देखिए ये कैसा अध्यात्म विज्ञान है जो साइंस से भी ज्यादा बारीक। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम्। जो बाह्य स्पर्शों से अर्थात इंद्रियों के बाहर के भोगों से जो उसमें आसक्ति नहीं रखता, उसको क्या मिलता है, वो अपने अंदर का सुख अनुभव करता है। तो हम जानते हैं कि आपको जब संतोष होता है तो कहाँ होता है, वो बाहर होता है या अंदर होता है। आपको शांति मिलती है तो वो बाहर मिलती है या अंदर मिलती है। हम सबको पता है कि मन के अंदर बैठे बैठे कोई संकल्प आ गया, किसी दुश्मन की ही याद आ गई, किसी नुकसान की ही याद आ गई, मैं बेचैन हो जाता हूं, मेरी शांति भंग हो जाती। तो मन के अंदर संकल्प आते ही वो संकल्प कहाँ का होता है, वो बाहर का संकल्प होता है। जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा मैंने व्यापार किया है या जो भोग विलास किया है, उसके संकल्प उसके संस्कार मन में इकट्ठे होते रहते हैं, और उन संकल्पों की जब मुझको याद आ जाती है बैठे हुए, तो जो नुकसानदायक संकल्प थे जिनसे दुख मिला वो मुझको बेचैन कर देते हैं, जिनसे सुख मिला उनके प्रति मेरे अंदर आसक्ति पैदा होती है, ये मुझको बार बार मिला। अब बताइए दिन भर आपका जो दैनिक जीवन व्यतीत होता है उसमें कितने तरह के सुख कितने तरह के दुख होते हैं। ज्यादातर आपका वक्त बेचैनी में बीतता है। आप किसी दिन का भी अपना एनालिसिस करके ईमानदारी से खुद देख लीजिए, सुबह जागने से लेकर रात्रि के सोने तक आपका जो दैनिक जीवन है, दैनिक दिनचर्या है, जो कुछ भी आप करते हैं, आप देख लीजिए अच्छी तरह से एनालिसिस करके कि आपका बेचैनी का वक्त या मन में बेचैनी के संकल्प ज्यादा उठते हैं, चैन के संकल्प कम उठते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर दिन आप संसार में रहकर दुख ज्यादा भोगते हो, सुख कम भोगते हो। लेकिन क्योंकि मुझको दूसरे विज्ञान का पता ही नहीं है, जीने का दूसरा रास्ता पता ही नहीं है, इसलिए मैं मजबूरी में वही करता रहता हूं जो रोज करता हूं। तो सत्पुरुष जो इस बीमारी का इलाज जान चुके हैं, जिन्होंने इसका हल निकाला है, वो हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो इंद्रियों के बाहर के जो स्पर्श हैं या जो भोग हैं, इसमें मैं आसक्त हो जाता हूं। होना क्या था, मैंने इस तरह का जीवन व्यतीत करना था, इस तरह की बुद्धि का निश्चय बदलना था कि इनके प्रति मेरी आसक्ति हर वर्ष कम होती रहे। क्यों कम, क्यों चाहिए वो, कहते विंदति आत्मनि यत् सुखम्। यदि ऐसा करोगे तो अंदर जो तेरा निज सुख है उसको तू प्राप्त कर सकता है, जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, वो तेरा अपना निज सुख, जब चाहे जितना चाहे तू भोग सकता। इसलिए वो कहते हैं सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्मिति, अर्थात जो ब्रह्म में समाधिस्थ है जिसको ब्रह्म योग कहते हैं, उस ब्रह्म योग से जिसका अंतःकरण युक्त है, अंतःकरण जुड़ा हुआ है, अर्थात मन बुद्धि जिसके साथ उसमें जुड़ अच्छी प्रकार से स्थिर है, कहते हैं कि ऐसा पुरुष अक्षय सुख को अनुभव करता है या प्राप्त होता है। अक्षय सुख जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षय सुख। अब बताइए संसार का कोई भी सुख मेरा दो मिनट ही लगते खत्म हो जाता है, क्योंकि अंदर अक्षय सुख है वो खत्म ही नहीं होता। इसीलिए जब अंदर मेरा मन लगता है तो मेरी समाधि लग जाती है, इस प्रिय देह को भूल जाता हूं, प्रिय संसार को भूल जाता हूं, सारे साजो सामान को भूल जाता हूं, सारे बाहरी सुखों को भूल जाता हूं, बाहरी बेचैनी को भी भूल जाता हूं। तो इसीलिए जिसने अंदर ईश्वर का सुख या आत्मसुख का अनुभव किया है वो इसको जानता है कि बाहर जहर है और अंदर अमृत है। इसीलिए जब तक सत्संग श्रवण नहीं करते, ये विज्ञान को सीखने की कोशिश नहीं करते, तो फिर जैसे कि वाणी हम रिपीट कर रहे थे उसमें आ रहा था मनुवा नित अंधकार विचारे मिल सत्संग पावे उजिया। ये सत विचार मन के अंदर उजाला पैदा करता है, विवेक पैदा करता है। जिस विवेक बुद्धि से मैं जब अंतर्यामी जो ईश्वर है, अंतर्यामी जो आत्मा है, अंतर्यामी जो ब्रह्म है, जब मैं उसका साधना के द्वारा अनुभव करता हूं, तब मुझको पता लगता है कि अंदर ऐसा सुख है जिसको अक्षय सुख कहते हैं, जो कभी खत्म होता ही नहीं, परमानेंट सुख है। तो मैं इतना कीमती मानव जन्म फिर उस सुख की प्राप्ति के लिए, उस विज्ञान को सीखने के लिए, उस मार्ग पर आगे चलने के लिए व्यतीत करता हूं, ना कि जो सुख संसार में मैं भोगता हूं, जो कि दुख ज्यादा है सुख कम है, उसके लिए मैं इतना कीमती वक्त कीमती आयु खत्म कर देता हूं और सुख मुझको मिलता नहीं। क्योंकि संसार का सुख प्राप्त करने का मतलब यह है कि वो आप वो व्यापार कर रहे हो जिसमें घाटा ज्यादा है प्रॉफिट कम है। इसलिए हर व्यक्ति जो संसार में आया है वो पछता कर ही संसार से जाता है, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहते हैं कि इसीलिए अपने आप अक्षय सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वो क्षणिक बाह्य विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा ले। तो इस श्लोक का यह मतलब है। अगला श्लोक कहते हैं 22वां, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एव ते आदि अंत बनता कौनते न तेषु गमते बुधा। कहते क्योंकि विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो भोग हैं, विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो भोग हैं, वे सब अविद्याजन्य हैं, इसीलिए केवल दुख के ही कारण हैं। क्योंकि आध्यात्मिक आदि तीन प्रकार के दुख उनके ही निमित्त से होते हुए देखे जाते हैं। हम जानते हैं प्रकृति में तीन प्रकार के दुख होते हैं, उसको अध्यात्म में कैटेगराइज किया गया कि एक आदि व्याधि और उपाधि। आदि क्या है ये, इसको आध्यात्मिक दुख कहा गया। आध्यात्म का मतलब यह है कि ये जो मन के अंदर जो क्लेश पैदा होता है, मन के अंदर जो चंचलता पैदा होती है, मन के अंदर जो तरह तरह की आपकी डिजायर्स की करंट उठती हैं, उसके लिए जो आप पुरुषार्थ करते हो, प्रयास करते हो, उसके कारण जो आपको मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं संसारी जीवन व्यतीत करते हुए, परिवार में जीवन व्यतीत करते हुए, तो वो जो मुसीबतें हैं वही मेरा दुख है। वो कहां पैदा होता है? वो मन में ही पैदा होता है। अब बताइए, इच्छा कोई भी बच्चे के अंदर उठा है तो हम जानते हैं कि वो कितना बेचैन हो जाता है। उसके मन में के इच्छा उठने के उठते ही उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, माता पिता को परेशान करना शुरू कर देता है, खुद भी बेचैन होता है। यहां तक कि बच्चे कुछ इतने भी शैतान होते हैं या इतने जिद्दी भी होते हैं, या यूं कहिए कि मन के अंदर वासना इतनी स्ट्रांग होती है उनकी कि उनको वो वस्तु मन चाहे ना मिले तो सिर फोड़ लेंगे दीवार से, फर्श से, फर्नीचर से अपना सिर टकरा के खून निकाल लेंगे। उनकी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए, अभी तो केवल छोटा बालक है। अब बताइए, ये वासना का जो वेग है उसके अंदर तीव्र है, इसलिए वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है, अपना ही सिर वो जमीन से फोड़ रहा है, दीवार से फोड़ रहा है। ये आम घटनाएं परिवारों में कुछ बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन विचार करके यदि देखिए तब आप इससे सीख सकते हैं। क्या हो गया? पेट इसका भरा हुआ है, घर में कोई चीज की कमी नहीं है, परिवार के लोग भी घर में मौजूद हैं, ये क्यों सिर फोड़ रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप उसको समझाओगे कैसे? तो एक ही रास्ता निकलता है माता पिता के पास कि कोई उसको मनचाही वस्तु दे दें या किसी तरह से बहला लें, ध्यान उसका बांट दें ताकि मन वहां से हट जाए, दूसरी जगह लग जाए, उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। यही तो आप करते हो, क्या करते हो? यहां वो विचार करने की बात ही करें कि ये दुख है, उसको आदि दुख कहते हैं, कि मानसिक क्लेश जो मन हर समय मेरे अंदर मौजूद है, जिसका संग एक सेकंड के लिए मेरा छूटता ही नहीं जब तक मेरी आंख खुली हुई है, वो रोगी मन है। आदि रोग इसको कहते हैं। इसीलिए मनुष्य सुबह से लेकर रात्रि तक इस मन के कारण परेशान होता रहता है और दुखी होता रहता है। इसका इलाज को संसार में पता ही नहीं है, इसका इलाज क्या? एक ही राज मालूम है, मन में जो इच्छा उठ रही है उसको पूरी कर लो तो चैन हो जाएगा। तो इच्छा का उठना मनुष्य के अंदर दुख का उठना है, उसके जीवन में क्लेश का आना है और उसका हम स्वागत कर रहे हैं। तो सत्पुरुष उल्टी बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि मन का जो सुख है वास्तव में वो अंदर है, बाहर नहीं। बाहर जितने भी संसार बनेंगे मन को बाहर ले जाने वाले इंद्रिय भोग के, वो आपके मन के अंदर गलत संस्कार पैदा करेंगे, गलत आदतें बनाएंगे, और भविष्य में आज जितना बेचैन हो रहा है व्यक्ति उस मन के कारण, भविष्य में उससे ज्यादा उसने बेचैन होना है, क्योंकि बीमारी बढ़ गई। इसीलिए दूसरा जो कहते हैं व्याधि, हम सब जानते हैं कि शरीर हमको कितना प्रिय है, और शरीर में कोई भी रोग पैदा हो जाता है, पेट में दर्द ही हो जाए, पेट खराबी हो जाए, कितने तरह के रोग शरीर में होते हैं, जन्म से ही होते हैं, बाद में ही पैदा हो जाते हैं। तो ये शरीर कितना दुखी करता है इंसान को, ये हम सब जानते हैं कि बचपन में भी कितना क्लेश देता है, और सबसे ज्यादा क्लेश ये बढ़ापे में देता है जब ये मनुष्य लाचार हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, लेकिन मनुष्य का जवान है वो बुरा नहीं हुआ, इसलिए अंदर से निराशा के साथ जीवन व्यतीत करता है, बड़ा दुखी रहता है। फिर उपाधि, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तूफान आ जाते हैं, बड़ी ठंड पड़ जाती है, बड़ी गर्मी पड़ जाती है, कोई आपको चोट पहुंचा देता है, तो आदि व्याधि उपाधि तीन तरह के दुख हैं जो मनुष्य के साथ हमेशा ही बंधे रहते हैं, इससे उसको कभी छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि इसका रास्ता संसार में है ही नहीं, मिलेगा कैसे। इसीलिए वो कहते हैं ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनः एव ते आदि अंत बनता है कौनते न तेषु गमते बदम। इसका मतलब ये हुआ कि दुख योनया एव ते, अर्थात ये दुख इसी लोक में नहीं है, ये शरीर समाप्त भी हो गया तो अगला शरीर जब मिलेगा उसमें भी यही दुख तुझको भोगने को मिलेंगे, इसलिए इस लोक में भी तो दुखी रहेगा और परलोक में भी, अर्थात अगले जन्म में भी तो दुखी रहेगा, तो इलाज तुम्हें इसी जन्म में इसका करना है, ये वो आपको सिखाना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि ये विषय भोग केवल दुख के कारण है, ये विषय भोग केवल दुख के कारण है, इतना ही नहीं किंतु ये आदि अंत वाले भी हैं। विषय और इंद्रियों का संयोग होना भोगों का आदि है या भोग का प्रारंभ है, और वियोग होना ही अंत है। हर चीज जो मिलती है कुछ देर के लिए मिलती है फिर बिछड़ जाती है, कोई स्वाद नहीं मिलता है आपको, किसी बच्चे को आपने एक टॉफी भी खरीद के दे दी तो कितनी देर का स्वाद लेगा, खत्म हो जाए, कि दूसरी चीज के लिए वो बेचैन हो। तो ये आदि अंत वाले हैं, इसीलिए इसका जो परमानेंट जो रिजल्ट है वो है बेचैनी, मानसिक असंतोष, मानसिक क्लेश, ये संसार के भोगों का रिजल्ट है जो हमको भोगने को मिलता है, लेकिन क्योंकि हम दूसरे तरह का जीवन जीना ही नहीं जानते इसलिए मजबूरी करके इसी में हमारा जन्म व्यतीत हो जाता है। इसीलिए जो आदि अंत वाले हैं वे केवल बीच के क्षण में ही प्रतीति वाले होने से अनित्य हैं, इसलिए इन भोगों को अनित्य कहा जाता है। हे अर्जुन, परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकशील बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में नहीं रमा करता। जो मनुष्य में बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि में सत्विचार है, तो ये विचार सुन रहे हैं, शास्त्र का मर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सत्विचार है, इन विचारों के अनुसार जब मैं अपने शरीर का उपयोग करता हूं तो क्या होता है कि मुझको वास्तव में वो सुख मिलता है जो इस देह के अंदर मौजूद है, जिसके लिए आपको संसार पर निर्भर होना नहीं पड़ता, वो परमानेंट सुख मुझको भोगने को मिलता है जब मैं इस सत्विचार का विज्ञान अपने जीवन में धारण करता हूं या उसको सीख लेता हूं। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकशील बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में नहीं रमा करता, क्योंकि केवल अत्यंत मूढ़ पुरुषों की ही पशु आदि की भांति विषयों में प्रीति देखी जाती है। जो जितना ही ज्यादा संसारी भोगों के लिए, संसारी सुख के लिए बेचैन रहता है, बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, उस पर बड़ी माया की कमाई करता है, बड़े साधन इकट्ठे करता है, कहते हैं कि वो मूढ़ पुरुषों की ही तरह पशु आदि की भांति विषयों में प्रीति रखता है। हम जो अपने आपको बड़ा आदमी कहते हैं ना, देखो जगत को शंकराचार्य क्या विवेचन कर रहे हैं, ये मूल पुरुषों के चिन्ह हैं जो संसार में अपना जीवन बहुत फैलाते हैं, बहुत साजो सामान इकट्ठा करते हैं, उसके लिए बहुत पैसा कमाते हैं, फिर अपने मन को और अधिक बेचैन करते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं संसार को भोगने के, संसार को देखने के, संसार में बहुत ही चीजें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाते हैं। अब बताइए, जो मेरे दुख का स्रोत है उसको, उसका मैं विकास कर रहा हूं और बड़ा खुश हो रहा हूं। इसीलिए इसको जगदगुरु शंकराचार्य मूढ़ पुरुष कह रहे हैं, अत्यंत मूढ़ा नाम एव ही विषयेषु रति दृश्यते यथा पशु प्रवृत्ति ना। साथ साथ कह रहे हैं कि ये पशु प्रवृत्ति है, पशु में बुद्धि नहीं होती। जिस मनुष्य में ये बुद्धि है ही नहीं कि ये मेरा जीवन को बिगाड़ेगा, वो भी पशु के समान है, क्योंकि सदबुद्धि है ही नहीं इसके पास। वो खुद भी बिगड़ रहा है, दूसरों को भी बिगाड़ रहा है। इसीलिए अगला श्लोक जो वो कह रहे हैं कि फिर रास्ता क्या है, कहते हैं कि शक्नोति ये एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्तः सा सुखी नरः। जो मनुष्य यहां जीवित अवस्था में ही शरीर छूटने से पहले पहले अर्थात मरण पर्यंत काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, अर्थात सहन करने का उत्साह रखता है, कहते हैं वही युक्त है और वही सुखी है। युक्त का मतलब अध्यात्म में योगी होता है, और योगी ही इस मन के वेग को, जिसमें काम क्रोध का वेग उत्पन्न होता है, उसको वो सहन करने की आदत बनाता है, और जब सहन करने की आदत बनाता है तो मन की दौड़ जो बाहर की है वो धीरे धीरे उसकी क्षीण होती रहती है, और मन जो है अंदर टिकने लगता है। काहे में टिकता है? प्रभु नाम में वो टिकने लगता है, क्योंकि सुख अंदर है, इसीलिए मन फिर क्या होता है उसमें वो शांत होने लगता है। इसीलिए वो आगे इसकी परिभाषा कर रहे हैं, ये काम क्रोध का वेग कैसे है। ये वो कहते हैं किसी अनुभव किए हुए सुखदायक इष्ट विषय के इंद्रिय गोचर हो जाने पर, यानी सुन जाने पर या स्मरण हो जाने पर, उसको पाने की जो लालसा है उसको तृष्णा कहते हैं, उसी का नाम काम है। कोई भी वस्तु आपको याद आ गई, कोई रसगुल्ला खाने का शौकीन है, अचानक याद आ गया तो मन में याद करेगा, फिर बाहर जाके खरीदने का प्रोग्राम बनाएगा, खरीद के लाएगा, फिर इसका स्वाद लेगा। तो ये जो है बार बार सुंदर, जितनी बार खाएगा उतनी ज्यादा उतनी याद आएगी, उतनी ज्यादा आदत उसकी खराब हो जाएगी। इसलिए ये तृष्णा है, ये प्यास है, भोगों की प्यास मन के अंदर ये पलती रहती है। और वैसे ही अपने प्रतिकूल दुखदायक विषयों के दिखने सुनाई देने या स्मरण होने पर उनमें जो द्वेष होता है उनका नाम क्रोध है। जैसे कोई घर में बच्चा है, कोई उसको मान लिया उड़द की दाल बहुत पसंद है, घर में पता लग जाए आज उड़द की दाल बना रही है मम्मी, बड़ा खुश हो जाएगा। उसको मूंग की दाल बड़ी बुरी लगती है, तो पता लग जाए आज घर में मूंग की दाल बनी है तो उसका चेहरा देखने लायक होगा, उसके मन में क्या बीतती है ये माँ अच्छी तरह जानती है। तो यही काम और क्रोध है, यही तृष्णा या स्वम ईर्षा और द्वेष भी कह देते हैं, राग द्वेष भी कह देते हैं। राग का मतलब आसक्ति, और राग के बाद जो द्वेष आता है अर्थात उसको हम क्रोध भी कहते हैं। क्रोध क्यों कहते हैं? क्योंकि मन के अंदर वो बेचैनी पैदा कर देता है, इसलिए उसको क्रोध करके या द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष, इसीलिए ये जो काम क्रोध है राग द्वेष है, दैनिक जीवन में हर आइटम हमारा ऐसा ही है। इसीलिए दिन भर हम कभी भी एक दिन भी पूरी आयु में चैन का व्यतीत नहीं कर सकते, ये संतोषों का एनालिसिस है, विश्लेषण। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो काम क्रोध के जो वेग हैं इसका पहचान क्या होती है। वो कहते हैं कि रोमांच होना, सुख और नेत्रों का प्रफुल्लित हो जाना, ये चिन्हों वाला जो अंतःकरण का क्षोभ है, अंतःकरण की बेचैनी है, वो काम से उत्पन्न हुआ वेग। और शरीर का कांपना, पसीना आ जाना, होठों को चबाने लगना, नेत्रों का लाल हो जाना, ये इत्यादि चिन्हों वाला वेग क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग है। कहते हैं कि ऐसे काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है, उसको सहन करने का उत्साह रखता है, वो मनुष्य इस संसार में योगी है और वही सुखी है। अब बताइए, मैं तो काम क्रोध के वेग को बढ़ाने के लिए संसार में पैसे की कमाई करता हूँ, व्यापार करता हूँ, उसको खर्च करके फिर भोगने की तैयारी करता हूँ, जबकि मेरी हर क्रिया, हर सोच इस काम और क्रोध के वेग को हर दिन बढ़ा रही है। तो जिस दिन यदि बीच में इस देह की मौत आ गई तो कितनी भयंकर बेचैनी लेकर मैं मरूंगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और जिसने सत्पुरुषों को अपना गुरु धारण करके उनके इन वचनों को ध्यान से श्रवण करने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश की है, उसका मन फिर प्रभु सिमरन में लगने लगता है। और जिसका मन प्रभु सिमरन में लगने लगता है, उसको फिर ईश्वर के आनंद का अपनी देह में अनुभव होने लगता है। तो वही जानता है कि संसार में जहर है और इस देह के अंदर अमृत है। इसीलिए जो ईश्वर उपासना है, ईश्वर भक्ति है, इस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है, ना कि संसार के भोगराज करने के लिए। इसलिए हम बहके ना उस उद्देश्य के लिए जिए जिसके लिए मानव जीवन प्रभु ने हमको इतना कीमती जीवन बख्शा। ओ धन्य।